अब आगे दो किरदार हैं। पहले किरदार के साथ दुआ कर ले, अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले। इन असहाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून, बेशक जन्नती लोग आज मजे करने में मशगूल होंगे। शुगल लफ्ज़ देखिए, उर्दू में आप कहते हैं शुगल मेला, मशगूलियत, वही लफ्ज़ है। यानी इस दुनिया के शुगल छोड़े संजीदगी के साथ अल्लाह के दीन को सर्व किया, खुद भी आग से बचे, दूसरों को बचाने की कोशिशें की। आज जन्नत में अल्लाह ने इनके लिए फन प्लेक्स शुरू कर दिया। शुगल क्या है? फन, डिज्नीलैंड और कोई भी नाम ले लीजिए। और फा के हुन, फकहा, खुश मिजाज बंदा, स्माइली, खुश, हंसने बोलने वाला। क्या अकेले? नहीं, हुम वाज हुम फी जिलालिन अलल अराइकी मुत्तकियून, वो और उनकी बीवियां या उनके शौहर घने सायों में हैं, मसनदों पर तकिए लगाए हुए। अराइक, अरीका की जमा। अरीका किसको कहते हैं? बेड को नहीं कहते, छप्पर खट को कहते हैं, मुसहरी। देखिए, एक बेड होता है जिसके चार पाए और ऊपर मैट्रेस डाल दिया, बहुत हुआ तो पीछे एक खूबसूरत सी बैग कर दी और इतनी उस पर काम करा दिया कि बैठो तो चुभे, फैंसी हो गया, आते जाते धक्के लग रहे हैं। अरीका होता है वो छप्पर खट जिसके चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं। पहले दौर में लोग मुसहरियां सजाते थे दुल्हन की, और उससे भी पीछे चले जाएं तो जो बादशाहें और मलकाएं और शहजादियां होती थी ना, उनके महल्लात में इस तरह के बेड होते थे। जन्नत में इतनी आरामदेह काउचिस, काउच कह लें आप इसको, रिक्लाइनर्स, और कैसे मुत्तकियों, तकिए लगाए हुए, तकिया कलश छुपा हुआ इसमें, यानी लेयर मूड है। आप सोचे ना, शौहर भी है, बीवी भी है, शुगल भी हैं, खुश मिजाजियां भी हैं, और साथ ही साथ तकिए लगाकर, जैसे वो एक बड़ा नवाबाना किस्म का तसव्वुर नहीं आता। और आगे लहुम फी हफा की हतन, और उनके सामने फल रखे हुए, मेवे, कहीं ड्राई फ्रूट है तो कहीं फ्रेश फ्रूट है, और कहीं अंगूर है तो कहीं चेरीज हैं तो कहीं स्ट्रॉबेरीज हैं, और सबसे बढ़ के जो वो है जिसको बंदा सोच भी नहीं सकता, लजीज चीजें खाने के लिए वहां मौजूद होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ रख दिया, बल्कि वलहुम मा यदाउन, वो भी है जो वो तलब करेंगे। सिर्फ दिल में तलब है, ये नहीं कहा कि जो पूछेंगे या मांगेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, बस दिल में तलब आएगी और उनके सामने पेश हो जाएगा। हदीस में आता है कि जन्नती जब जन्नत में बैठे होंगे ऐसी जगह पर, सामने से एक परिंदा उड़ेगा तो जन्नती के दिल में ख्याल आएगा, कभी मैं इसका गोश्त खाऊं, क्योंकि आप कहते परिंदों का जो गोश्त है बहुत सॉफ्ट होता है। सूरत वाकया में भी आता है, लहम तईरिन मिम्मा यश्तहून, बस सोचने की देर है कि मैं इसका गोश्त खाऊं, वो परिंदा उसके सामने नीचे गिरेगा, ज़िबा होगा, फिर उसको भुना जाएगा, चंद सेकंड के अंदर ये चीज होगी और उसके सामने भुना बनाया गरम गरम बारबेक्यू मीट आ जाएगा, ना ऑर्डर ना कुछ। इसी तरह एक और रिवायत है, ये आप पढ़ा करें, मैं आपको एक छोटा सा काम दूं, अगर समर में बच्चों के साथ घर में कर सके ना, तो जन्नत का बयान बुक है, इकबाल केलानी साहब की सीरीज है, उसी की एक बुक है ये, आप उसको शुरू से लेकर एंड तक थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के साथ खाने के वक्त पे, शाम को या मगरिब के बाद, थोड़ा थोड़ा खुद भी पढ़े। इतना सिंपल है कि आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं, आप पढ़ सकते हैं ऐसे। उसमें जन्नत के घर कैसे होंगे, जन्नत के बाजार कैसे होंगे, वहाँ के कपड़े, वहाँ के घर महल्लत, इनता ही खूबसूरत। मैंने वो पूरी बुक दरसों की सूरत में पढ़ाई भी है, यानी एक जगह एक दर्स किया तो एक टॉपिक, फिर दूसरा, वो पूरी एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज तैयार हुई हुई है कि जिसको वाकई और ऑथेंटिक रिवायात से जन्नत की खूबियों को सुनना है वो उसमें से पढ़ ले। तो उसी में से कई चीज़ें मेरे सामने इस वक्त आ रही हैं। जन्नती बैठे मैं ऐसे कौच पे, सामने एक खूबसूरत सी फलों की बेल है और उस पर आप सोचिए कि अंगूर और मजे मजे के फल लटक रहे हैं, उसका दिल करेगा कि मैं ये फल खाऊं। फरमाया वहां से वो बेल जो है ना, वो बढ़ती भी बिल्कुल उसके करीब उसका फल आ जाएगा। और अल्लाह ताला कहते हैं, हम आगे 30वें और 29वें बारे में तो बहुत कुछ है, कौन से, कुतुफुहा दानिया, उसके फल जो है ना वो दानिया झुके हुए, जैसे कभी आप देखे फल पकता है तो अपने वजन से झुक जाता है ना। आजकल भी खुबानी लगी हुई है बाहर एवरीकोट, मतलब वो हवा भी चलती है तो नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह आप देखिए आलू बुखारे होते हैं या कोई भी फ्रूट है, फरमाए वो फ्रूट बिल्कुल उसके मुंह के साथ लगेगा। और हदीस में आता है कि जन्नत के फलों के ऊपर ना छिलका, ना उसके अंदर गुठली और ना बीज है, और ना धोने की जरूरत, ना मक्खियों के से बिन बताहट की जरूरत। आज सुबह ये किसी ने आर्टिकल भेजा था कि फ्रूट को खाने से पहले सिंक में पानी भरें, फिर उसको थोड़ी देर डबो दें तो केमिकल्स भी खत्म हो जाएंगे, ये होगा। जन्नत में ऐसा कोई बखेड़ा नहीं है, जितना खाना है आप खा लें। और सबसे बड़ी मजे की बात, मोटे होने का डर ही नहीं, ना शुगर बढ़ने का डर, और ना ब्लड प्रेशर हाई होने का डर, और ना कैलोरीज गिनते हैं। हमारा हाल है कि खाना तो नहीं छोड़ते, सा गम भी खाते हैं, चिप्स भी खा रहे हैं और गम भी खा रहे हैं, वह ऐसा कोई गम नहीं है। अच्छा, खा लिया खा लिया खा लिया, जितना भी दिल करेगा ना खा लेगा। जब अब दिल भर गया बस, अब दुनिया में अब देखिए फल खाने के बाद दिल क्या करता, कोई उठा ले फटाफट छिलके, मेरा भी उठने का मूड नहीं है। खाना पकाना, खिलाना, खाना सहाना, उसके बाद मिटना मुश्किल होता है। वहीं शायद पड़े रहे और फिर आखिर मक्खियों के भिन भिन से डरें और उठें और फेंकें, और फिर छिलके फेंके तो किचन का क्या हाल हो जाता है। 2 घंटे बाद ही किचन में सड़ंध आती है ना छिलकों की, वो ऐसा कुछ नहीं। फरमाए वो शाख वापस जाएगी अपनी जगह पे और जहाँ थी, और जो फल उसने खाया है ना अल्लाह के हुक्म से वो वहीं दोबारा रेनोवेट हो गए, फिर लग जाएगा। रेनोवेशन करते रहे ना तो 100 साल पुराने घर भी नए लगते हैं। और जो लोग अपने आप को मेंटेन रखते हैं वो बूढ़े ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपनी केयर करते हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं। जन्नत की कोई भी नेमत जो चंद लम्हे के लिए कोई इस्तेमाल करेगा फौरन रेनोवेट हो जाएगी, एवर न्यू। और सबसे बढ़ के ये तो खाना पानी है ना, और ये देखिए शौहर और बीवी की यहां बात है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। कुरान पाक में ये टॉपिक बहुत जगह आता है। दुनिया में बहुत दफा इंसान अपने शौहरों और अपने घर वालों के तकाजे नहीं पूरे कर पाता। कब? एक तो कुछ भी ना कर रहा है ना, फिर भी औरत कहती है सारी जिंदगी इनको खुश करना चाहिए, ये नहीं खुश हुए। मुझे एक सिस्टर की बात याद आ गई, कहती है जितना मैंने अपने शौहर और अपने ससुराल का ख्याल रखा है अपनी शादी से लेके आज तक, कोई पत्थर दिल भी होता ना तो वो मोम हो चुके होते। और इनका आज भी हाल है, कहते हैं कीता की हो, किया क्या है, सारे करते हैं, करना नहीं था। सबसे आसान अल्लाह को खुश करना है। चले ये तो हो गया आम हालात, अब आगे दीन पे अल्लाह के काम सीख रहे हैं। आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं पता इस वक्त, मैं नहीं मानती कि किसी का भी शौहर घर में उस वक्त बैठ के उसको देख रहा होता। सबके हस्बैंड शौहर दिन में काम भी होते हैं ना, और जब खैर से वो आते हैं उससे पहले आप सारा कुछ कर करा सकते हैं। लेकिन 80% सिस्टर्स का इशू जो शैतान उसके दिल में पैदा करता है वो शौहर और घर है। फिर घर निपटा नहीं, फिर में। और चले घर को तो पीछे बंद कर करा देंगे, शौहर का क्या करें। एक सिस्टर ने कहा सिर्फ मेरे शौहर इसलिए नाराज है कि गर्म रोटी नहीं है मैं उनको पका के देती, पहले तो इस वक्त देती थी, अब जाती हूँ या पका के रख आती हूँ या कुछ कुछ। शौहर सिर्फ ये रोना रोते हैं कि आपको क्या पता मैंने कितनी कुर्बानी दी है इस दिन पे, 6 महीने से मैं ठंडी रोटी खा रहा हूँ। तो कभी उनको तबूक के लिए निकलना पड़ा जहाँ तो खजूर खाई थी सारे दिन में एक, और वो भी नहीं रही तो गुठलियाँ चूसी थी, और वो भी ना रही तो फिर खजूरों के पत्ते खाए थे। सोचिए, मैं सोचती हूँ इतने नाजुक मिजाज हो गए, हम दीन के लिए निकलते हैं ना तो दूसरे में मशवरे देते हैं, मियाँ कभी ख्याल रखना। सुबह रखा हुआ क्यों, आपको कोई मैसेज आया? नहीं ना, देखो ना अब तुम इतना इधर रह रही हो तो मियाँ क्या करेगा। और वो देखो ना बच्चे बेचारे, जिसका बच्चा बिगड़ना है ना अल्लाह सबके बिगाड़ से बचाए, अल्लाह ना करे किसी दीन सीखने सिखाने वाली का बच्चा बिगड़ जाए, कहेंगे और जाओ दीन के कामों में, अपने बच्चों को छोड़ के तुम दूसरों के पढ़ा रही हो। याद रखिए, जिसको ये जन्नत असखाबल जन्नत इल्यौम फी शुगल फाक्यूं याद है, वो इन चीज़ों को अपने बैरियर नहीं ब्रिज बनाता है। वो शौहर को ये नहीं कहता मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, शौहर को उस मिशन का हिस्सा बना लेता है। वो अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करते, वो अपने बच्चों को साथ रखते हैं। हदीस में आता है कि जन्नती जब जन्नत में जाएगा बड़ा सा मोती, जैसे पर्ल नहीं होते सफ़ेद पर्ल, बड़ा सा पर्ल होगा और उसके अंदर उसका पूरा घर होगा, कोई जोड़ नहीं कोई कट नहीं, और उसके एक कोने में जब खड़ा होगा तो दूसरा कोना नहीं दिखेगा, इतना बड़ा घर है। और मुख्तलिफ हिस्सों पे उसकी बीवियां होंगी, और जब जन्नती अपने घर में जाएगा शौहर बीवी इतने मशगूल हो जाएंगे कि वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होगा, पर्दे लग जाएंगे, नींद नहीं है वहां, रात भी नहीं है। इमेजिन तो कीजिए जरा आप, उस क्या वो रिजॉर्ट होगा, क्या वो पीसी, और क्या वो बूरबंद, और क्या वो बड़े बड़े होटल जिनके आप नाम सुनते हैं, राल टपकती है, और वहां ऐसे मजे में काम कोई नहीं, इसलिए कि काम करके आए हैं। हम दुनिया में आराम कर रहे हैं, पता नहीं वहां ना कुछ काम करना पड़ जाए। तो याद रखिए कि अल्लाह के वादे, और ये जन्नत है, ये कुरान है, ये मेरी बातें नहीं है, ये किसी की तफसीर नहीं है, एक एक लफ्ज जाइए किसी नॉन मुस्लिम से डिक्शनरी लीजिए अरबी की और इस एक आयत का तर्जुमा जाके डिक्शनरी की रोशनी में पढ़ लें, छोड़ दें इस्लाम की बात को। एक एक लफ्ज बोल के बता रहा है कि आपके रब ने आपको आपके हर अमल की जजा देनी है इंशाल्लाह, अच्छी भी देनी है, तो अल्लाह ना करे बुरी मिल गई तो क्या होगा। हम वाजवाज हूँ फी जिलाल, और ये जिलाल वो पर्दों की तरफ इशारा है जो शोहर बीवी के गिर तान दिए जाएंगे। और दुनिया में कितना भी हो बंदा एक दूसरे से खुश, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जिससे बंदा चिढ़ खाता है। फरमाया जन्नत की औरत में गंदगी नहीं है, मर्द में भी गंदगी नहीं है, हैज नहीं है, निफास नहीं है, रतूबतें नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। क्यों कहा अज़वाज मुतहर हो, सिगरेट की बू नहीं आती उनसे, वो गंदे गंदे कपड़ों में नहीं आपके घर में आके बैठ जाते। देखिए दुनिया में बीवियां अक्सर अपने शौहरों से कितने शिकवे रखती हैं, अमूमन मर्द केयरलेस होते हैं, बीवियां नहीं होती। अगर नेक है ना सब्र कीजिए, कल जन्नत में अल्लाह सारे शौक पूरे करवा देगा आपके। लहुम फी हफा की हतुम व लहुम मा यदउन, अब ये तो एक रोमांस था और ये सच्चा रोमांस है। इसके ख्वाब देखा करें अपने शौहर के साथ, सवाल पैदा होता है ये शौहर कौन से होंगे, या तो यही होंगे और अल्लाह करे यही हो, इसकी कुछ शरायत होंगी। दोनों नेक है इंशाल्लाह दोनों जन्नत में जाएंगे। दिल में थोड़ी बहुत जरूरत है, नेक तो है, पसंद तो है, लेकिन थोड़ी सी बातें गड़बड़ की हैं, अब मुझे पता है आपके चेहरों पे लिखी हुई हैं ये बातें। तो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करने से पहले एक नहर है, नहरे हयावान कहते हैं, जैसे उर्दू में हैवान लफ्ज़ लिखते हैं ना वैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जबर है हयावान। उसमें अल्लाह ताला गुसल दिलवाएंगे, डुबकी दिलाएंगे, दिलों के कीने खपट सब खत्म, व नजाना सूरत अल्लाह राफ में हम खींच लेंगे माफी से दूर मिन गिलन, दिल के कीने बुगस। तो शोहर बीवी नेक है ना, तो अगर तबीयत का इख्तलाफ है, आदतों का इख्तलाफ है, होता है, सबका हो सकता है, थोड़ा बहुत है, कोई आपकी हर आदत अच्छी नहीं है और कोई हर आदत उन्हीं की बुरी नहीं है, होता है, लेकिन जन्नत में नेकी की बुनियाद पे पहुंचेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। और वैसे भी आप देखिए कि अपने मिजाज के एतबार से तो औरत क्या चाहती है, चाहती है दूसरा कोई मिले। कितने लोग कहते हैं उनको कोई और शोहर मिले, बात तो बड़ी पर्सनल है। आपने तो नहीं बोला, एक अम्मा बोली थी सुना हुआ आपने वाक्य, बहुत बड़ा मजमा था अमेरिका की शायद बात है, बहुत लोग थे, जन्नत भी दर्श था उस दिन भी कुछ ऐसा। तो मैंने ऐसे ही ये बात जब की, मैंने कहा वैसे भी देखे ना कि औरत तो नहीं बदलना चाहती अपना शौहर, तो पीछे ना जी मैं बदलना गालां सुन सुन के थक गई तो वो अम्मा जी अपना दुख बयान कर चुकी थी कि मैंने बदलना अपना शौहर भाई। अब दूसरी सूरज यह कि शौहर नेक है तो बीवी बद है, हजरत लूत की बीवी, हजरत नूह की बीवी, ऐसे मर्दों की तो बड़ी मौज है, उनको तो वहां बेहतरीन बीवियां मिल जाएंगी। बीवी नेक थी, शोहर बद था फिरौन, अल्लाह उस औरत को इख्तियार देगा। सही हदीस में आता है जन्नत की औरत को इख्तियार दिया जाएगा जन्नत के मर्दों में से, जिसको चूज कर लो। सोच लें किसी बड़े दीनदार का नाम, अल्लाह को पता है किसको अल्लाह आपके लिए चूज करे। दुनिया में माँ बाप ने ना पूछा हो अल्लाह पूछेगा और वह उनका ब्याह हो जाएगा। और दोनों ही बुरे थे तो दोनों जहन्नम में खुश, वो उधर चले गए। तो दुनिया में इस सफर में शौहरों को साथ लेकर चले, ये खुलासा इसका, बच्चों को भी साथ लेकर चले, अल्लाह इस्तकामत दे हम सबको। अब देखिए कि जिंदगी भी जन्नत तब बनती है जब दोनों का मिजाज मिलता हो। आप कहते हैं ये तो रोना है, नहीं रोना नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं शौहर ऐसे वैसे, मैं कहती क्यों, आप भी तो सोचिए आप किस काबिल थे। तैयब बात तैयब भी तैयब बनी है, अल्लाह तैयब कर देगा इंशाल्लाह, असल ये बात है। फिर इसके बाद देखिए आप, सबसे बड़ी दौलत जन्नत की, सबसे बड़ी नेमत सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। ये बाकी तो सारी मादी चीजें हैं ना, जन्नत के कपड़े और हुल्ले। दिल तो मेरा कर रहा है मैं बुक खोल के आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, पर वक्त नहीं है, खुद पढ़िएगा। जन्नत की औरत वो कपड़े पहनेगी, 70 हुल्ले, फ्लेयर्ड फ्रॉक, अंदर लहरें तय हैं कितने। आज देखिए जब फ्रॉकों का रिवाज आया था, कैसे कितने कितने 20-20 गज कपड़ा लगाकर लोग अपने लंबे लंबे जुब्बे सिलवाते थे, और वो भारी पहने कौन, पहन के उठे कौन, चले किधर का नहीं। इतने हुल्ले 70-70 लेयर्स होंगी और उसके अंदर से उसका जिस्म ऐसे झलक रहा होगा जैसे क्रिस्टल के अंदर से डोरी दिखती है। लेकिन शर्त है, दुनिया में जिस्म छुपे हुए थे, दुनिया में सी थ्रू कपड़े पहनेंगे तो वहां तो ये कुछ नहीं मिलेगा ना। तो ये जन्नत की मादी नेमतें हैं, انسان ہے خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے، لیکن اصل روحانی نعمت جنت کی سلام قول میں رب رحیم، اللہ اکبر، ان کے لیے حاضر ہے وہ سب کچھ جو طلب کریں گے، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. دیکھیے یہاں کال لفظ بڑا اہم ہے. یہ قرآن کیا ہے جس میں سے آپ پر میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام، کلام کال ہی ہوتا ہے نا. جنہوں نے دنیا میں اللہ کا کلام پڑھا وہاں اللہ کا یہ کال سنیں گے، اللہ سلام بھیجے گا. اس پہ بہت خوبصورت حدیثیں ہیں. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی ساری نعمتیں دے دے گا. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں نہیں روکے گا، فوراً چلے جائیں گے ابتدا سے ہی. کسی کو بلا حساب، کسی کو ہلکے سے حساب سے، اور کسی کو بس بغیر کسی زیادہ پوچھ کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. نہ انتظار، نہ عدالت کے فیصلے کا فکر، اور سب وہاں پہنچ جائیں گے. اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت دیں گے وہ اپنی رضا مندی دیں گے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ جنتی جب جنت میں آ جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلائے گا. یوم المزید ہوگا وہ جمعہ کا دن. مختلف اوقات میں مختلف باتیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کہیں گے جی اللہ راضی کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں آگ سے بچا دیا، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کچھ مانگو، آج میں تمہیں ایسی نعمت دینا چاہتا ہوں جو پہلے نہیں دی. وہ کیا؟ کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہوں. اور جنتیوں کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کیے جائیں گے. آپ کو پتا اس عورت کا نام جس کو اللہ نے دنیا میں بھی سلام بھیجا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جزاک اللہ. کیسی بیوی تھی! اللہ کے نبی غار حرا میں عبادت میں مشغول، اور حرا روٹی کھانا جو لا سکتی تھی وہ لے کے آتی تھی. اور جب لے کے آ رہی تھی ایک دن تو اندر جبرائیل نے کہا کہ نبی آپ کی زوجہ آ رہی ہیں کھانا لے کر، وہ آئیں گی تو ان کو میرا اور اللہ کا سلام کہیں گا. اچھی بیویاں بنیں. شوہروں کو آپ اپنے اخلاق سے بھی اچھا کر سکتے ہیں، اور اللہ کا سلام آنا یہ چھوٹی بات نہیں. جس کو دنیا میں اسلام اچھا لگا وہاں بھی ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ سارا کچھ پڑھ کر دل نہیں چاہ رہا کہ ہم دنیا سے آگے چلے جائیں؟ صحابہ کا اس لیے دل نہیں لگتا تھا دنیا میں، ان کی نظریں آگے تھی. آپ کو پتا ہو نا، اگلے ہفتے آپ نے کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں آپ کا وارم ویلکم ہوگا، آپ کے لیے سارے لوگ منتظر ہیں، کھائیں گے، پئیں گے، خوش ہوں گے، گھومیں گے، پھریں گے. آپ کا یہ ایک ہفتہ مشکل ہوگا ادھر گزارنا، تو کہاں پھر جنت کی باتیں سن کر دنیا میں دل لگے. تو ساری خواہشوں کو آگے سے آگے لے کر چلیے، محرومیاں کمیاں سب بھول جائیں گی. حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں کھڑا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی کرے گا، فرشتوں کو کہیں گے جاؤ ذرا اس کو دور سے جنت دکھا لو، پھر اس کو سارے دکھوں اور تکلیفوں کا بدلہ دیتا ہوں، کیونکہ وہ دکھی تھا بہت. اور جب وہ جنت کا ایک منظر دیکھ کر دور سے، یعنی جب ایک ٹور کروا کے واپس لایا جائے گا، کہا جائے گا سناؤ بھائی کیا غم تھے، بیمار تھے نا، بہت دکھی تھے، تمہاری دعائیں نہیں سنی جاتی تھیں، بڑے تم پہ الزام لگے اور تمہارے بچے ایسے اور وہ. تو کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے زندگی میں غم دکھ تکلیف بیماری کا نام تک نہیں سنا. آپ نے فرمایا کہ دور سے جنت کا ایک نظارہ بندے کو دنیا کے سارے غم بھلا دے گا. تو آج اس دنیا کی اتنی اہمیت ہے.
ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم.
لیکن اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے سچ. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، استغفر اللہ، اور اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. یہ لفظ وامتازو بہت اہم ہے. آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ممتاز، یہ وہ لفظ ہے. دنیا میں بڑا شوق ہوتا ہے بندے کو ممتاز ہونے کا، اور ممتاز کو انگلش میں زیادہ سمجھیں گے آپ، प्रोमिनेंट होने का, टू बी प्रोमिनेंट, मेरा नाम हो, मेरे कपड़े अच्छे हो, सब में मैं नुमाया हो जाऊं, मेरी तारीफ हो, मेरे नाम बोले जाए, मुझे सर्टिफिकेट मिले, मुझे डिप्लोमा मिले, मुझे कोई सदर वजीर आजम के हाथ से कोई इनाम मिल जाए। फरमाए वमताज, आज तुम्हें नुमाया करते हैं, उठो, गेट आउट, अल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो। कैसे डांटा जा रहा है कि तुम यहां कहां बैठ गए हो, इतने अच्छे लोगों की मजलिस है ये, जन्नतियों की मजलिस है, तुम यहां कैसे आ गए। और यहां कई और तरीके थे इस बात को कहने के, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून क्यों कहा, इसके दो मानी लिखे। नंबर एक, मोमिनीन और सालेहीन से अलग हो जाओ, क्योंकि दुनिया में चाहे तुम इनकी कौम के लोग थे, इनके घर के अफराद थे, कुंबे बिरादरी वाले थे, मगर अब यहां तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। और ये सच है, एक ही घर के अंदर आप देखिए कि फिरौन भी है तो बीबी आसिया भी थी। कभी शौहर बीवी के मिजाज में और दीन में बहुत फर्क होता है, लेकिन वहां ये नहीं चलेगा। वहां कोई किसी की साइड लेकर या किसी के तवस्सु से नेकी में नहीं आ जाएगा आगे। दूसरा मफहूम क्या है कि आज तुम सब आपस में अलग अलग हो जाओ, आज तुम्हारी जत्थेबंदियां, तुम्हारी गिरोबाजियां खत्म, तुम्हारी पार्टीबाजी खत्म, तुम्हारे तमाम रिश्ते और ताल्लुकात काट दिए जाए, और आज तन्हा अकेले अकेले अपने आमाल की जवाबदेही करनी होगी। सूरत अल-अनाम में एक आयत आती है कि आ गए ना तुम अकेले हमारे पास, जैसे तुम्हें दुनिया में अकेले भेजा था। तो जरा इमेजिन कीजिए, मत सोचिए कि हम दोस्तों का पूरा ग्रुप ही इकट्ठा जहन्नुम में जाएंगे, चलो वहां बैठ के रो धो लेंगे इकट्ठे। नहीं, हर बंदे का अपना हिसाब है। अब डांट क्या, पहला जुर्म, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैताना, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी आदम के बच्चों कि शैतान की बंदगी ना करो। क्यों, इन्नहु लकुम अदुव्वु मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये क्या बात हुई, यहां देखिए लफ्ज इबादत इताअत के मानों में, बहुत कम लोग हैं जो शैतान की इबादत करते हैं, उसको सजदा करें, रुकू करें, क्याम करें, नहीं करते, चंद होंगे बिगड़े हुए लोग वर्स्ट सोच में। यहां आपको असल में इबादत का मानी इताअत समझ आएगा। तीन दर्जे होते हैं इबादत के, इताअत, गुलामी और परस्तिश। यानी बातें तुम शैतान की मानते थे। इमाम राजी हैं अपनी तफसीर में कहते हैं, ला ताबुदु शैतान के मानी क्या, ला तुती उहू, उसकी इताअत ना करो, उसकी बात ना मानो, क्योंकि इताअत करना इबादत है। देखिए ना, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, में क्या कहा, किस इबादत का हुक्म है उलिल अम्र की, सजदा तो नहीं करता कोई अपने बड़ों को, नबी सल्लम को हम सजदा तो नहीं करते। हाँ, बात मानने का हुक्म है, जो बड़े हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनकी बात मानो। तो जब एक हुक्म अल्लाह की मर्जी का हो तो उसको मानना पड़ेगा। तो गोया कि यहाँ आपको इबादत का खूबसूरत मानी समझ आ रहा है कि जब शैतान तुम्हें किसी बात का कहता था तुम चल पड़ते थे, क्योंकि तुम्हारा नफ्स बड़ा मोटा था, उसको अच्छा लगता था, तुम उसके कामों में शरीक हो जाते थे, तुम्हारा दिल, तुम्हारी जुबान सारी उसकी बातें मानती थी। आज मजे करो। और सबसे बड़ी बात है कि तुम सिर्फ खुद ही अकेले नहीं थे, तुम्हें मैंने पैगाम दिया था कि मेरी बात करो। और ये जो अलम आहद इलैकुम ने सहद में वादे अलस्त का तस्करा है, जो हमारी रूहें अल्लाह के एक होने का कर्ज के आ चुकी हैं। और क्या कहा था, वाने बदूनी, और ये कि मेरी इबादत करो, हाजा सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। देखिए, यहाँ तौहीद और शिर्क की बुनियाद पे जन्नत और जहन्नुम का फैसला हो रहा है। यानी तुमने शिर्क करके, कुफर करके मुझसे अलग कर लिया अपने आप को। वलकद अदल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, और इसके बावजूद इसने तुम में से गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया। यहाँ लफ्ज जिबिल्ला वही है जिसको जिबिल्लत कहते हैं, एनिमल एक्सीडेंट। और शैतान हमारे सिल्फी जज्बात और जो कह लीजिए कि जबिल्लत के तकाजे, उनको इतना आम करता है कि खाने पीने सोने जागने में जिंदगी गुजर जाती है, बात अल्लाह की नहीं मानी जाती। अफलम तकूनु ताकिलून, वहां खड़ा करके कहा जा रहा है तुम अकल नहीं रखते, अपने पाँव पे तुमने खुद कुल्हाड़ी मारी है। हाजी ही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये है वो जहन्नम जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। इस लौहल यौम, दाखिल हो जाओ आज के दिन इसमें। क्यों, बिमा कुंतुम तकफुरून, बवजह उसके जो तुम कुफर करते थे। अल्लाह का भी कुफर, जहन्नुम का भी। अब बंदा बोलना चाहे, कहा नहीं, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज हम तुम्हारे मुंहों पे मुहर लगा देंगे, जिप कर देंगे तुम्हारे माउथ को, बोल ही नहीं सकोगे। वह तू कल्ली मुनाई दी हिम, और तुम्हारे हाथ कलाम करेंगे हमसे। सोचिए जरा आपके हाथ बोलने लग जाए, क्या मुश्किल है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये जुबान क्या गोश्त का लोथड़ा है ना, तो वो बोल सकते हैं। आज एक बेजान टेप रिकॉर्डर बोल लेता है, सीडी बोलती है, तो ये हाथ पांव तो फिर भी एक जानदार चीज है। वतश खुदा रजुलू हम, और गवाही देंगे तुम्हारे पांव किसकी, बीमा कानो यकसीबून, उसकी जो तुम कमाइयां करते थे। यानी मुंह बंद और हाथ और पांव गवाहियां दे रहे हैं। सोचिए सारी जिंदगी इंसान इन्हीं को देखता है, और उस वक्त इंसान किसी की ना माने लेकिन अपना जिस्म उसके खिलाफ है। हदीस में आता है कि जब इंसान के ये अज़ा उस वक्त इस तरह बोलेंगे तो वो परेशान होगा, वो कहेगा तुम्हें तो मैं बचाने के लिए झूठ बोलना चाह रहा था और तुम ही मेरे खिलाफ हो गए। सूरत नूर आयत 24 और हामीम सजदा आयत 20 में भी बात आती है जिस्म के बोलने की, अज़ा के बोलने की और इन गवाहियों की। आज आप देखिए कि इनमें से कोई बात सुन के अगर दिल में आता है ना कि नहीं होगा, तो ना मानिए फिर। कुरान में तो कह दिया और ये हो के रहेगा। आज दुनिया में इतने अनयूजुअल वाक़ियात हो रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं होंगे। और फिर आखिर में फरमाया वलौ नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम, इसको सोचते वक्त अपनी आंखों पे हाथ रखें, और अगर हम चाहें तो इनकी आंखें मूंद दें, यानी कल सुबह हम उठें तो हमारी ये आंखों की जगह कुछ भी ना हो। तमसा क्या होता है, प्लेन कर देना, पैरेलल कर दें। फस तबकुस सिरात फन्ना युबसिरून, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखे कहाँ से इन्हें रास्ता सजाई देता है। यानी आज इन आंखों से अल्लाह के रास्ते नहीं देख रहे तो कल आंखें ना रहें तो फिर देखेंगे भला कैसे आते हैं। वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, हम चाहें तो इन्हें इनकी जगह पर इसी तरह मसख करके रख दें कि फमस्तताउ मुदीयम वला यरजियून, कि ये ना आगे चल सके ना पीछे हट सके। इंजाम देख लीजिए, सबक का शुरू का हिस्सा जितना खूबसूरत तस्वर दे रहा था, आखिर ने इंसान को उतना दुखी कर दिया। लेकिन याद रखिएगा कि जन्नत जितनी बड़ी हकीकत है, जहन्नम भी उतनी बड़ी हकीकत है। और जन्नत के किस्से सुनकर जैसे राल टपकती है, तो जहन्नम के किस्से सुनकर भी खौफ और खशियत से दिल में ख्याल आना चाहिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे बुरे अंजाम से बचाए। और ये जो कहें ना आगे जा सकेंगे ना पीछे पलट सकेंगे, मुराद ये कि अब क्यामत तो आ गई, अब ना दुनिया में पीछे जा सकते हैं ना आगे कोई खैर है। वो दुनिया जिसके ऊपर फूलते थे वो तो चली गई, और जिस जन्नत के ऐसे ख्वाब देखे हुए थे वो तुम्हारे हाथ में नहीं आने। अल्लाह ने तुम्हें इस जगह खड़ा करके सामने कर दिया साबित कि तुम उस दुनिया की जिंदगी से जो फायदा लेना चाहते थे ले चुके। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बुरे हिसाब से बचाए। छोटा सा रुकू था हमारा, और आपने देखे सिर्फ तीन बातें हुई हैं, क्यामत, नफका, और उसके बाद जन्नत, और थोड़ी सी जहन्नम की बात। ये है ईमान बिल आखिरा, अकीदा तसलीस, जो तीन बेसिक्स हैं ना इस्लाम के, उनमें अगर आप देखें तो ये एक चीज है। करें कि आप इसको सुनकर, नंबर एक, क्यामत के मनाजर को सोते हुए याद करके सोना है, यानी सोने से पहले क्यामत को सोचिए कि शायद हम भी इस वक्त जब सुबह उठें तो यही कह दें मम बासन मिम मरकदीना। और कम से कम तीन लोगों को ये मनाजिर पढ़कर सुनाने हैं, यानी घर जाकर हल्के अंदाज से, बहुत एग्जेजुरेशन में किए बगैर इन बातों को आपने इंशाल्लाह शेयर करना है। और जो चेकलिस्ट है, इसके आज छः नुक्ते हैं, क्या मेरे दिल को यकीन है। नंबर एक, जब सूर फूका जाएगा तो सब लोग अपने रब के हजूर पेश होने के लिए कब्रों से निकल पड़ेंगे। सोचे हजरत कैसा होगा, फिर एक जोरदार आवाज होगी और सब रब के हजूर हाजिर कर दिए जाएंगे। अल्लाह क्यामत के दिन मुंह बंद कर देंगे, अल्लाह चाहे तो हमारी आंखें मूंद सकते हैं, अल्लाह चाहे तो सूरते मसख कर सकते हैं। और इसी तरह फिर तीसरा नुक्ता, मुजरिमों से कहा जाएगा छट कर अलग हो जाओ, अपने ऊपर लें, शायद नेकों में बैठ के हम भी खुद को नेक समझें। अल्लाह करे हम नेक बन जाएं, फिर तो बच जाएंगे, लेकिन अगर हम नेकों में बैठ के खुद को नेक समझें और दिल हमारा गुनाहगार हो तो उस दिन ये आवाज लगेगी गेट आउट। कितना बुरा लगता है, किसी को मजलिस से उठा दिया जाए कैसा लगता है, जहाज में बैठे हुए किसी शख्स को उसकी सीट से उठा के पीछे कर दिया जाए कैसा लगता है। اللہ ہمیں حشر کے دن نشر نہ کرے. پھر اگلا نقطہ ہے, رب رحیم کی طرف سے اہل جنت کو سلام کیا جائے گا. جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے اور جنت میں جو طلب کریں گے وہ حاضر کیا جائے گا. بڑے دل سے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. اے اللہ, ہم بغیر حساب کے جنت کا سوال کرتے ہیں. اور دعا کیجیے, اللہم انا نعوذ بکا من عذاب جہنم, اللہم اجرنی من النار, اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے رکھے. چھوٹے بچوں سے جب بات کریں نا گھر میں, تو جنت کی زیادہ بات کیا کریں. آپ جہنم کی بہت باتیں اگر بہت چھوٹی عمر میں بتائیں گے نا, تو نیگیٹیوٹی آئے گی. اور اگر کوئی دین سے بہت دور ہے بھی, تو اس کو بھی جہنم کی باتیں نہ بتائیں. پہلے امید دلائیں, ہوپ دلائیں. تو پھر کہیں جہنم کی کس کو بتائیں جو نیکیاں کر کر کے بھول رہے ہیں, اکڑے پھرتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرما دے.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون